आज हम सभी के बीच हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय संतोष दीदी जी है, जिनके नाम में ही वो ताकत है कि जिससे वे मिलते हैं हर एक आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है। जहां संतुष्टता आती है तो हर इंसान के चेहरे पर वो प्रसन्नता की झलक आपको मिलने से ही अनुभव होती है। भक्ति में कहा जाता कि जब भी कोई विघ्न होते हैं, घर में कलह क्लेश होता है, तो माँ संतोषी का व्रत किया जाता है। परंतु बाप दादा ने हम सभी की, जो भी हमने द्वापर से भक्ति की है, तो हम सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। और इस शांतिवन में आने के बाद हमें उन विशेष बाबा के जो रत्न हैं, जिन्हें हम बाबा के नैनों के नूर और कोहिनूर, ऐसे बाबा के खजाने के वो दिव्य मूर्तियां हैं कि जिनकी केवल दर्शन मात्र, दिव्य दृष्टि पाकर के हम सब अनुभव करते हैं कि बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां होती है, उन प्राप्तियों की झलक फलक हम सब अनुभव करते हैं। हमारे दीदी जी ने साकार ममा बाबा की दिव्य पालना ली है, साथ ही साथ दादियों के अंग संग आप रहे हैं। दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी ब्रिजेंद्रा जी, जो बीज ही थी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, हमारे प्यारे बाबा जिनके अंग संग दादी जी रहते थे, और हमारे दीदी जी भी आपके अंग संग रहकर दादी जी की शिक्षाएं, पालना और प्यार वो आज भी हम दीदी जी के द्वारा अनुभव करते हैं। और हमने देख रहे कि जैसे ही साकार बाबा की आप पर नजर पड़ी, तो आपको देखते ही बाबा ने कहा था वो मैनेजर बच्ची आ गई है। देखिए बाबा की दूरदृष्टि, और बाबा ने उस समय तो दीदी बहुत छोटे थे, तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही बाबा ने आपको इतनी ऊंची उपाधि दे दी। साथ ही साथ अव्यक्त बाबा से तो कई बार आप मिलते ही रहे, पर हम एक बार दीदी जी के साथ मिल रहे थे और दीदी जी को बाबा कुछ कह रहे थे वरदान, तो उसमें बाबा ने 7 बार शब्द प्रयोग किया, बच्ची विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, वो एक शब्द दीदी जी के लिए बाबा ने 7 बार कहा था। और दादी ब्रिजेंद्रा जी कहा करते थे, हम तो जाएंगे एडवांस पार्टी में, आप यज्ञ को संभालना। तो आज उन महान आत्माओं के वो शब्द, वो वरदान हम दीदी जी के जीवन में देख रहे हैं। तब ये कहा जाएगा कि लगन एक छोटा सा शब्द होता है, परंतु उस छोटे से शब्द से जीवन में हर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन जिसे ये लगन लग जाती है, उसका पूरा जीवन ही ये लगन बदल देती है। और इसीलिए कहा जाता, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई थी मगन, पर मीरा तो क्या, मीरा जैसे अनेक आत्माओं के जीवन को लगन में मगन करने वाले हमारे दीदी जी है। आपकी स्थिति, आपका व्यवहार सदैव बाबा को प्रत्यक्ष करता है और हम सभी के प्रेरणा स्रोत भी है। तो आज हम दीदी जी के द्वारा सुनेंगे अचल, अडोल, एक रस स्थिति कैसे बनानी है। हम सब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई के भाई बहनों की ओर से दीदी जी आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जरा जोर से थालियां बजाए। धन्यवाद। ओशन
शांति। बाबा हमेशा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे एक आकाश में तारामंडल है और दूसरा इस धरती के ऊपर तारामंडल। आकाश में सूर्य चंद्रमा और सितारे सदैव चमकते रहते हैं और अपनी रोशनी देते हैं। उसी प्रकार इस ईश्वरीय तारामंडल में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा मां और हम सब बाबा के लकी सितारे अपनी अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। सब सितारों में से भी एक सितारा विशेष गाया जाता है, वो आपको मालूम है, वो है ध्रुव सितारा। दूसरे जो भी सितारे हैं वो बहुत बारी अपनी जगह बदली करते हैं, कभी उनकी चमक डल हो जाती है तो कभी ब्राइट हो जाते हैं, परंतु ध्रुव सितारा जो है वो एक ही स्थान पर एक ही जैसा चमकता रहता है। तो बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ये ध्रुव सितारा तुम्हारी मम्मा की यादगार, क्योंकि हमने मम्मा को बहुत नजदीक से देखा कि कैसी भी परिस्थिति होवे, कैसी भी व्यक्तियां होवे, कैसे भी सरकमटेंस होवे, कैसा भी वायुमंडल होवे, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, चाहे बाहर से आई हुई परिस्थिति की परीक्षा, चाहे तन का हिसाब किताब, परंतु उस ध्रुव सितारे का कभी भी न स्थान बदली हुआ और न उसकी चमक कभी बदली। सदैव उसने अपनी रोशनी से हम सितारों को चमकाने की बहुत मेहनत की। मम्मा के ऊपर इतनी बड़ी परीक्षा आई तन की, परंतु मम्मा का चेहरा जो है वो सदैव इतना चमकता था, इतनी रोशनी देता था, जो कोई भी ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता है कि मम्मा कोई बीमार। अंत तक शरीर छोड़ने के समय भी जब मम्मा ने पुराने तन का त्याग किया, उस दम तक मम्मा ने बहुत 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 सेवाएं किया। अंत के समय, उस समय तो थोड़े भाई बहन होते थे और मम्मा से खास मिलने के लिए आए हुए थे, क्योंकि सबको मालूम पड़ा था कि मम्मा की तबीयत बहुत सीरियस है। और उसी समय जो बाबा की कुटिया है वहां पर बाबा ने खास अंगूरों की बेलें लगाई थी, तो पहला पहला वहां से अंगूर निकला। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा ये सब बच्चे आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप इनको अपने हस्तों से अंगूर खिलाओ। अभी मम्मा की एकदम लास्ट घड़ी थी। मम्मा ने कभी भी जीवन में बाबा को ना नहीं कहा। बाबा जो कहते थे मम्मा सदैव जी बाबा करके चली। अंत के समय भी जब बाबा ने मम्मा को ये कहा कि सबको अपने हस्तों से अंगूर खिलाओ, तो मम्मा ने कहा जी बाबा। उसमें बैठने की भी ताकत नहीं थी, लेटी पड़ी थी, और सब बच्चे जो भी थे 500-600 आए हुए, उनको अपने हस्तों से अंगूर दे रही, पर हाथ ऐसा उठाने की भी ताकत नहीं थी। तो मम्मा की जो ब्राह्मणी थी जमुना बहन, वो मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी और जो अंगूर लेने वाले उनको कहती थी आप नजदीक करो अपना हाथ, और वो मम्मा के हाथ को ऐसा करती थी और अंगूर देती। उसके बाद जब मम्मा ने सबको अंगूर दे लिया और थोड़े समय के बाद मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। त्याग तपस्या और सेवा क्या होती है, ये मम्मा के जीवन से प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता था कि मम्मा के रग रग में कैसे बाबा और बाबा की सेवा भरी पड़ी। इसीलिए मम्मा के लिए बाबा कहते थे बच्चे तुम्हारा बाप तो नंबर वन है पर तुम्हारी माँ प्लस वन है, क्योंकि सबसे पहले अव्यक्त भी हो गई, अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया और उसी के साथ साथ मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो नई दुनिया में भी पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण गाया गया, तो प्लस वन में आ गई। तो मम्मा और बाबा हम सभी के आगे ऐसे आदर्श रहे जिनको देख करके हम सभी को फॉलो करना बहुत इजी रहा, क्योंकि कोई नया रास्ता अपनाना होता है तो चलने में दिक्कत जाती है, परंतु अगर गाइड हमको कोई लेकर के जाता है तो चलना बहुत इजी हो जाता है। तो बाबा ने ऐसा सहज सरल रास्ता हम बच्चों को बताया जो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते बच्चे फॉलो फादर करो, बाप के कदम के ऊपर कदम रखते चलो तो तुम्हारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। अपनी स्थिति को अचल बनाने के लिए हम सभी का यादगार जो अचल गढ़ है कितना ऊंचा है, आप लोगों ने देखा होगा, किन 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 ने देखा है, हाथ ऊपर करो। अचल गढ़ बहुत मुश्किल ऊपर चढ़ के जाते हैं, शुरू शुरू में जब आए थे तभी देखने को जाते थे। तो अचल गढ़ का मतलब यह है जो अचल ऊंचा है, ऊंची स्थिति अर्थात ही अचल, जो कभी भी हिलती नहीं है, सदैव अचल रहती है, अडोल रहती है। तो साकार बाबा की स्थिति ऐसी अचल और अडोल थी जो कितनी भी परीक्षाएं आई परंतु बाबा की कभी भी स्थिति ऊपर नीचे नहीं। बल दुनिया वालों ने बहुत विघ्न डाले, घर वालों ने विघ्न डाले, ज्ञाति वालों ने विघ्न डाले, कितना बड़ा बेगरी पाठ चला, परंतु बाबा जैसा था वैसा ही रहा, उसमें कोई हलचल नहीं। आप कहेंगे वो तो शिव बाबा का रथ था इसीलिए उनकी स्थिति ऐसी रही, ऐसी बात नहीं। बाबा कहता है मैं इस रथ का आधार लेता हूं, उसका भाड़ा मैं उसको दे देता हूँ। बाकी वो अचल स्थिति बनाने के लिए बाबा ने खुद अपने ऊपर मेहनत की। मेहनत के बगैर वो स्थिति बन नहीं सकती है। खुद के ऊपर अटेंशन दिया और बाबा का हमेशा यही कहना था कि जो ओटे सो अर्जन, जो करे वो ही अर्जन है। मैं अर्जन हूँ, मुझे करना है, क्योंकि जैसा कर्म मैं करूँगा मेरे को देख करके और करे। तो इसीलिए बाबा का अपने कर्मों के ऊपर अति अटेंशन था कि मेरे को देख के फॉलो करने वाले बहुत। और हमें भी बाबा हमेशा यही कहते हैं कि तुम बच्चे विश्व के शोकेस में हो, तुम्हें देखने वाले बहुत हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण बच्चे हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। और जब कोई भी ड्रामा देखा जाता है तो सारे ड्रामा का आधार हीरो पार्टधारियों के ऊपर होता है, और जो भी देखने वाले हैं उनका अटेंशन हमेशा हीरो की तरफ ही रहता है कि ये कैसा पार्ट बजाता है। वहां तो सिर्फ देखने वाले मनुष्य देखते हैं, परंतु हम जो इस स्टेज के ऊपर पार्ट बजाते हैं, सबसे पहले तो हमारा डायरेक्टर जो बाप है वो देखता है हमें, ब्राह्मण परिवार देखता है और दुनिया वाले हमको देख रहे हैं। चारों तरफ हमको देखने वाले हैं, क्योंकि हम औरों को यही संदेश देते हैं कि हमें भगवान पढ़ाता है और मनुष्य से देवता बनाता है। जब इतनी बड़ी बात हम उनको कहते हैं तो जरूर हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देवता बनने के लिए कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। लौकिक वाले भी सदैव चेक करते रहते, अलौकिक वाले भी चेक करते रहते, और बाबा कहता है मैं भी तुमको देखता रहता हूं। इसीलिए हमको अपना जो पार्ट है वो कितना एक्यूरेट बजाना है, अपने पार्ट के ऊपर हमें कितना ध्यान देना है, और करना भी कुछ नहीं, सिर्फ फॉलो फादर करते जाना है। और ये तो हमको जरूर समझना है कि जो परीक्षाएं बाबा के सामने आई, जो परिस्थितियां का सामना बाबा को करना पड़ा, हमें भी भिन्न रीति से उनका सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते से बाबा गए हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। आप यहां से अगर माउंट आबू में जाते हैं तो रास्ते में जो जो सीन सीनरियां आती हैं, आपके सामने भी वो ही आएगी, और मैं जाएगी तो मेरे सामने भी वो ही आएगी, वो बदलने वाली नहीं। तो उसी प्रकार जो भी परिस्थितियां बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जो पास किया है, उन परिस्थितियों का सामना हमें भी सबको करना है। परंतु वो सामना करते हुए वो सदैव न्यारे रहे, वो सदैव अचल रहे, वो सदैव अडोल रहे, कभी भी डोले नहीं, कभी निश्चय ऊपर नीचे नहीं हुआ। हाँ, जो कच्चे फीके थे उनका निश्चय ऊपर हो गया जिस समय बेगरी पार्ट चला, उस समय जिनको पक्का निश्चय नहीं था उनको उल्टे संकल्प चलना चालू हो गया कि देखो हमारे रिश्तेदार हमको बोलते थे, अरे खा खा के तो कुएं भी खुट जाते हैं, अभी दादा ने जो इतना सब कुछ यज्ञ रचा हुआ है कितना दिन इसका ये सब कुछ चलेगा, एक दिन तुम धक्के खा के वापस आएंगे। तो अंदर ही अंदर उनके आगे तो बहुत आंध मांध चलती थी, बहुत हलचल चलती थी। तो ब्रिजेंद्र आजादी हमको सुनाती थी कि जो कच्चे थे उनके आगे तो तूफान चलते थे, फिर जब भी बाबा क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे, तो फिर बोलते थे देखो ये मनमोहिनी है, ये ब्रिजेंद्रा है, ये निर्मल शांत है, इनके अंदर तूफान चल रहे हैं कि हम यहाँ से भागे, हम यहाँ से जावे, अरे ये कौन सा समय आ गया है, जो कुछ भी नहीं है, द्रौपदी के देगरे में खुड़खुड़ हो गई है, खाने को भी नहीं रहा है। इन लोगों को बड़ा विचित्र लगता था ये कि हमको तो कभी संकल्प भी नहीं आया और बाबा हमारे लिए बोल रहा है, पर बाबा को क्या बोलेंगे। फिर क्लास पूरा होगा तो बाबा को बोलते थे बाबा हमको तो कभी सपने में भी नहीं संकल्प आता है, आप हमारे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। बोला तुम लोगों को समझ है या नहीं, अकल है या नहीं। अरे बहू को सुनाना होता है तो बेटी को बोलना पड़ता है, भागने वाले दूसरे हैं। अगर मैं बोलूंगा ना फलानी को ये संकल्प आता है, जिसको आता है उसका नाम लूंगा ना, तो कल भागने वाले हो गए, वो आज ही भाग जाएंगे, तो आज नहीं भाग के जावे, इसीलिए बाबा तुम्हारा नाम लेता है, तुम निश्चिंत रहो। तो बाबा तो बड़ा रमजवाद था ना। तो ये जो भी परीक्षाएं आती है ये नथिंग न्यू है, कल्प कल्प ये सब सीन सीनरियां आती हैं और इनका मुकाबला करना पड़ता है। हर एक के आगे अलग अलग रीति से, अलग अलग रूप से आती है, पर आती तो जरूर, क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध के मैदान में खड़े रहो और दुश्मन को बोलो तुम मेरे पर वार नहीं करना, तो घर में जाके बैठो ना, फिर क्यों तुम युद्ध के मैदान में खड़े। तो वैसा ही जब हम माया को चैलेंज किया है, उसके सामने खड़े हैं, तो माया जरूर रूप बदल बदल के आएगी, परंतु हमारे में क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। युद्ध के मैदान में हिम्मत, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर हिम्मत है तो तुम्हारी जीत है। आज देखो सोल्जर के पास कितने भी अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु अगर वो हिम्मत हार गया तो सब कुछ हार जाएगा। तो हम जो रूहानी सोल्जर हैं, हमारे अंदर अगर हिम्मत है तो कैसी भी परिस्थितियां आवे, कैसी भी परीक्षाएं आवे, हम डट के उसका मुकाबला कर सकते। तो अपनी स्थिति को, हमारे को अचल बनाने के लिए हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। हमेशा कहा जाता है हिम्मत बांध बच्चे तो मदद दे खुदा, मदद दे बाप। बाप ऐसी मदद नहीं करता, आप बोलो बाबा को, बोलो बाबा तुम मदद करो, नहीं करेगा। वो कहता है एक कदम तुम उठाओ, हजार कदम मैं सामने आऊं, पर एक कदम तुमको उठाना पड़ेगा। तो जिस समय हम हिम्मत से खड़े हो जाते हैं तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आती। दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति, दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है, परिस्थिति बाहर से आती है, दोनों के आने के रास्ते अलग अलग है, इसीलिए उनका आपस में टकराव नहीं हो सकता है। परंतु चलते चलते क्या करते हैं, हमें जो अपना समय शक्तियां स्वस्थिति में लगानी चाहिए, उसके बजाय परिस्थितियों में मूंझ करके उसमें अपनी शक्तियां और समय को लगा दे, जिसके कारण क्या हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, और आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो स्थिति डगमग होती। परंतु अगर हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो परिस्थिति आई है, परिस्थिति सदा नहीं रहती है, कहा जाता है सब दिन होतना एक समान, ये ड्रामा परिवर्तनशील है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये खड़ा नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सरकमटेंस है, ये सब साइड सीन है। आज कहां भी जाना होता है तो हर एक क्या क्या ध्यान में रखता है। आज कोई ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, प्लेन में जाता है, तो पहले जाकर के क्या करेगा, कहेगा हमारे को विंडो सीट दो। विंडो सीट क्यों मांगते, टिकट लेने को जाते हैं क्या? हम बाहर की सीन सीनरियां देखेंगे, मनोरंजन होता है। तो बाबा भी कहता है ये जो परिस्थितियां हैं ये साइड सीन, इसको अगर साइड सीन समझ के तुम देखेंगे तो तुम्हारा मनोरंजन होगा। बाबा का मनोरंजन होता था, बाबा मनोरंजन करता था। सिंध वाले इतना घमसान करते थे, इतने विघ्न डालते थे, और कभी कभी थक जाते थे तो चुप करके बैठ जाते थे। तो बाबा कहता था ये सिंध वालों को क्या हो गया, आजकल कुछ करते नहीं। मतलब बाबा मनोरंजन करता था, बाबा उससे हिलता नहीं था उन बातों से। और बाबा के लिए तो आपको मालूम है कैसे कैसे पेपरों में इधर उधर कैसी कैसी बातें आती थी, परंतु बाबा को कोई परवाह ही नहीं। हिम्मत बाबा ने रखी ना कि मुझे ही बनना है, मैं ही जाकर के फर्स्ट नंबर की राजाई लेने वाला हूं। लक्ष्य पक्का, एक तो लक्ष्य पक्का रखा, दूसरा हिम्मत रखी तो आगे बढ़ता रहा। तो वैसा ही हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी परिस्थिति आती है वो साइड सीन है, उसको देख के मुझे मन को रंज नहीं देना है, दुखी नहीं करना है, परंतु मुझे मनोरंजन करना है। ये आई है परिस्थिति, ये चली जाएगी। बाबा कहते हैं बात चली जाती है, परंतु तुम क्या करते हो, बाप को भूल जाते हो, इसीलिए तुमको बात नहीं भूलती। भूलना चाहिए तुमको बात को, परंतु तुम क्या करते हो, बाप को भूलते। तो जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारी स्थिति जो है वो अचल बनने के बजाय हलचल में आ जाती। थोड़ी सी भी बात होगी ना तो हलचल में आ जाएगी। बाबा हमेशा साकार बाबा कहते थे तुम्हारी स्थिति कभी छुई मुई जैसी नहीं होनी चाहिए। छुई मुई समझते ना, जो लज्जावंती का झाड़ होता है ना उसको छुई मुई कहते हैं। हाथ लगाएंगे ना ऐसा बंद हो जाएंगे उसके पत्ते, हाथ दूर करेंगे तो खुल जाएंगे। तो जरा सी कोई बात होगी ना एकदम ऐसा, बस चेहरा देखेंगे तो पीला पड़ जाएगा, घबरा जाएंगे, स्थिति एकदम डगमग हो जाएगी। थोड़ा अगर कुछ ठीक हो गया तो खुश हो जाएंगे, अभी देखो तो उदास हो जाएंगे, अभी देखो तो खुश हो जाएंगे। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मूड मूड मतियों का बदलता है, इसीलिए तुम बच्चों के मूड नहीं बदलने चाहिए। तुमको एक आनंद के मूड में रहना है, खुशी के मूड में रहना है, क्योंकि तुम्हें कौन मिला है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको ये परिस्थितियों के परीक्षाओं के आंधी और तूफान कैसे क्या हिला सकते, इनकी ताकत ही नहीं है हिलाने की। परंतु हिलते क्यों हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। अपनी स्मृति, स्व की स्मृति, स्व के पिता की जो स्मृति है वो विस्मृति हो जाने के कारण स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। तो इसीलिए परिस्थिति को परिस्थिति समझ करके आप आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। आप अपनी स्थिति को एक रस बनाओ। एक रस कैसा बन सकता है, एक की याद के द्वारा ही एक रस बनेगा। क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र है उनकी स्थितियां अनेक रसों में, अनेक प्रकार के उनके मूड है, अनेक प्रकार के उनके स्वभाव है। तो जैसे जैसे को आप याद करेंगे वैसे वैसे आपकी स्थिति बनती जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, सिवाय मेरे और किसी को याद नहीं करो। क्योंकि बाबा सदैव एक रस, वो गुणों का सागर है, वो शक्तियों का सागर है। तो जितना जितना हम उसकी याद में रहते हैं तो हमारी स्थिति भी क्या बनती जाती है, एक रस बनती जाती। क्योंकि मन रस लेने की हमारे को टेव पड़ जाती है। नहीं तो मनुष्य कोई कन रस में फंसा हुआ है, कोई आंखों के रस में फंसा है, देखने की बातों में फंसा है, कोई ये सुनने की बातों में फंसा हुआ है, किसी को बोलने में झरमुई झंगमुई करने में बड़ा रस आता है, सारा टाइम उसमें ही जाता है। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इस पंचायत में ही जाता है, मेरा क्या हुआ वो देखने की उनको फुर्सत ही नहीं होती। अभी ऐसे को अगर हम याद करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी बनेगी ये तो बताओ। तो बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे निरंतर मेरे को याद करो, निरंतर इसीलिए मेरे को याद करो क्योंकि कोई भी श्वास तुम्हारा अंतिम श्वास हो सकता। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती है जो आपकी स्थिति इतनी अच्छी। मम्मा ने कहा मैं कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं करती, पर मेरे को हमेशा ये याद रहता है कि ये जो मेरा श्वास है यही मेरा अंतिम श्वास। अब ये बताओ जिसको ये याद रहेगा कि ये मेरा अंतिम श्वास है उसकी बुद्धि कहाँ जा सकती है? उसकी बुद्धि तो कहाँ नहीं जाएगी सिवाय बाप। तो उसी प्रकार हमको वापस घर जाना है। बाबा कहता है मैं तुम सभी को लेके जाने के लिए आया हूं, पर जो तुम्हारी ये स्थिति है इस स्थिति में लेके जाने वाला नहीं, तुमको सुधार के ही लेके जाऊंगा, तुम्हारे को पावन बना करके ही लेकर के जाऊंगा, तुम्हारे को ऊंचा बना के ही लेके जाऊंगा, उसके बगैर लेके नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए जब भी हमको ये याद रहता है कि हमें वापस जाना है, जैसा हम मनमोहिनी दीदी को देखते थे, दीदी ने लास्ट में जैसा उसको तात लग गई थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो जितना जितना हमको ये याद रहता है कि हमें घर वापस जाना है तो हमारी स्थिति उपराम हो जाती। उपराम होने के कारण सदैव ऊपर लगी रहेगी हमारी बुद्धि, नीचे आएगी नहीं, क्योंकि हमें जाना है ना। आज देखो आप लोगों को यहाँ आना था, सभी के बुद्धि में कब से चल रहा था हमको शांतिवन में जाना है, शांतिवन में जाना है। तो जहाँ जाना होता है उसकी याद रहती है, जहाँ से आना होता है उसकी याद नहीं रहती। जो जिस भी शहर से गांव से आए होंगे उसको थोड़े ही याद करते हैं हम, भाई शांतिवन में जा रहे, हम आबू में जा रहे, आबू में जा रहे। तो वैसे ही अगर हमको ये सदैव याद रहता है कि हमको वापस अपने घर जाना है, तो अपने घर जाना है तो कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश। हमारा घर कैसा है? निराकारी घर। तो मुझे निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस करनी। बाबा ने कल भी कहा तुम बच्चे अभी टॉकीज से मूवी में चले जाओ, मूवी से तुमको साइलेंस में जाना, अभी ज्यादा बोलना बंद करो, कम से कम बोलो, क्योंकि सूक्ष्म वतन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले। तो फरिश्ते जो है उनका लाइट का शरीर है, वहां पर फरिश्ते के लोक में सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं है, इशारों से काम चलते। तो तुम प्रैक्टिस करो इशारों से चलाने की, आवाज से परे जाते जाओ। जितना जितना तुम आवाज से परे जाएंगे उतना उतना क्या होगा, तुम्हारे पास शक्तियां जमा होगी, धीरे धीरे तुम फिर एकदम अपना जो घर है शांति धाम है वहां पर एकदम साइलेंस। पहले आवाज से परे जाके इशारों की दुनिया में तो जावे, फिर अपने शांति धाम में जावे। तो उसके लिए हमारे को खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जहां हम 10 15 20 शब्दों से किसी बात को स्पष्ट करते हैं उसके बदले हम 2-4 शब्द बोलें, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा देखो रोज हम बच्चों को पाठ पक्का कराता है। क्या पाठ पक्का कराता है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। कम बोलो क्यों बोलता है? जितना कम बोलेंगे उतना तुम्हारा समय बचेगा। हमारा ज्यादा समय बोलने में जाता है, सुनने में जाता है। फालतू बातें जिनको सुनने की आदत होती है वो सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं फालतू बातें मत सुनो, फालतू बातें मत बोलो, एक कान बंद कर डालो, ज्यादा सुनना नहीं। सुनना है तो क्या सुनो, आत्मोन्नति की बातें सुनो। बोलना है तो क्या बोलो, बाबा का परिचय दो औरों को, ज्ञान सुनाओ। देखना है तो क्या देखो, आत्मा को देखो। तो ये प्रैक्टिस हमको खुद को करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बैठ के अपने ऊपर मेहनत किया, आप बाबा की अगर जीवन कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको मालूम पड़ता है ना, बाबा ने शुरू से लेकर के कितनी मेहनत की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब बाबा की प्रवेशता हुई तब से लेके बाबा ने मेहनत किया। बाबा बैठ के बच्चों जैसी कापियां भर डालता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, जितने जो भी घर के मेंबर है सबके नाम की कापियां भरता। धीरे 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 करते वो आत्म अभिमानी स्थिति बन गई, आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि हम आधा कल्प से हमें देह के अभिमान में आके हम देहधारियों को देखने की हमको प्रैक्टिस, देह को देखने की प्रैक्टिस है, जिसके कारण हमारी बुद्धि फर्टाइल हो गई है, इधर उधर चली गई। अभी उसके लिए हमारे को क्या करना है, हमें वापस जाना है तो हमारे अंदर समेटने की शक्ति चाहिए। जितना जितना हम अपनी बुद्धि को और मन को समेटते जाते हैं, फालतू बातों से दूर करते जाते हैं उसको, उतना उतना क्या होता है, समेटने के कारण हम सहज अपने घर जा सकते। कहाँ भी जाना होता है तो समेटते हैं ना हम लोग, सामान को समेटते हैं, बैग भरते हैं, बिस्तरा भरते हैं, सारा समेट लेते हैं। तो वैसा बुद्धि को और मन को समेटने की बात है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत भटकी हुई। तो बाबा कहते हैं अब सब तरफ से निकाल डालो और अपनी बुद्धि को मेरे साथ लगा दो और वापस घर चलने की तैयारी करो। वो निराकारी दुनिया है, तुम आत्माएं वहां बिंदु रूप में ही स्थित रहती है, यहां बिंदु बनने की प्रैक्टिस करो। तो जितना जितना बिंदु बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी बात होती है उसको फुल स्टॉप लगाने की टेव पड़ जाती, वापस जाने के लिए। जितना हमारा बाबा के ऊपर भरोसा है, निश्चय है, उतना ही हमारा ड्रामा के ऊपर भी निश्चय चाहिए, तभी हमारे जो संकल्प है वो कम चलते, नहीं तो हमारी शक्ति किसमें वेस्ट होती है। हमारी जो स्थिति हलचल में आती है उसका कारण क्या है, ज्यादा संकल्प, व्यर्थ संकल्प। चलो विकल्प नहीं आएंगे, किसी विकार के अधीन होके संकल्प नहीं आएंगे, परंतु व्यर्थ संकल्प ज्यादा चले। ये ऐसा होता था तो ऐसा हुआ, ऐसा होता था तो ऐसा नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि ड्रामा को पक्का करो, कोई भी बात हो जावे फुल स्टॉप लगाना सीख जाओ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई सीन ऐसी आती है अपने को ऐसा लगता है अरे इससे बहुत नुकसान होने वाला है, परंतु आप अगर थोड़ा ठहरेगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा उससे कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। आप ये याद रखो, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसका डायरेक्टर हमारा बाप है। ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों का खराब पार्ट ड्रामा में नूंद करे। जब मेरा बाप ही कल्याणकारी है, ये ड्रामा भी कल्याणकारी है, मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो जब ये हमारी बुद्धि में बैठ जाती है ना ड्रामा की पॉइंट, तो हमारी स्थिति निश्चिंत हो जाती है, कोई चिंता नहीं। तो आ जाता है चिंता चिता बराबर, नहीं तो अनेक प्रकार की चिंताएं करते हैं। किस बात की चिंता करते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता करते हैं, ऐसा हुआ ये हुआ, जो आने वाला है पता नहीं क्या होगा। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों का दर्शन करा दिया है, इसीलिए चिंता नहीं करो, प्रभु चिंतन करो, स्वचिंतन करो, विश्व कल्याण के लिए शुभ चिंतन करो। चिंतन के लिए तो बाबा ने हमको कितने मार्ग बता दिए। अपनी स्थिति को हमारे को स्थिरियम करने के लिए, अडोल बनाने के लिए हमारे को ज्ञान का मंथन करने की आवश्यकता। जितना जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, उसका निचोड़ हमारी बुद्धि में जैसा जैसा बैठता जाता है, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में आता जाता है, हमारी स्थिति स्थिरियम होती है, व्यर्थ संकल्प पापे ही बंद हो जाते। मन का काम ही है संकल्प करना, आप उसको काम दो ना, आप उसको स्टॉप करेंगे तो कैसे चलेगा। जैसा लोग कहते हैं मन घोड़ा है, मन भागता है, मन को मारना चाहिए, अरे घोड़े को मारा थोड़ा ही जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किले से बांध के रखेंगे तो थोड़ा ही वो उसको कहेंगे कि तुमने उसको उसको कंट्रोल करना माना उसका लगाम हाथ में रख के आपको जहां चाहिए वहां बैठो जाओ सवारी करो उसकी। तो वैसा ही मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे को समरस संकल्प उठाने की शक्ति को धारण करना पड़ेगा, और वो समरस संकल्प जो है वो ज्ञान के आधार पर हमारे पास आता। जितना जितना हम ज्ञान सुनते हैं, उसका मनन और चिंतन करते हैं, उतने उतने हमारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ बनते जाते हैं, उतने उतने हमारे संकल्प जो है वो पॉजिटिव बनते जाते हैं। और जब हमें श्रेष्ठ संकल्प करने की शक्ति आती है हमारे अंदर, तो हम निर्संकल्प सहज हो सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों से निर्संकल्प हो सकते हैं, व्यर्थ संकल्प करने की टेव होगी तो निर्संकल्प नहीं हो सके। और हमारे परम धाम की स्थिति कौन सी है? निर्संकल्प स्थिति, कुछ भी संकल्प नहीं है। इसीलिए हमारे को क्या करना चाहिए, बाबा घड़ी घड़ी कहता है ना, तुम देखो पशुओं में भी वो अक्कल होती है, घास खाएगी गाय, एक घंटा घास खाएगी, सारा समय उसको चबाती रहेगी, नहीं तो उसको हजम कैसा होगा, उसको ताकत कैसे आएगी। तो वैसा ही भले तुम एक घंटा बाबा की मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, परंतु सारा समय वो स्व उन्नति की बातें क्या करो, चिंतन में लाते रहो। तो जितना जितना तुम चिंतन करेंगे, उतना उतना सब चिंताओं से मुक्त होते जाएंगे। और जब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, सदैव पॉजिटिव चिंतन में रहेंगे, ईश्वरीय चिंतन में रहेंगे, तो स्थिति जरूर एक रस हो जाएगी, अचल हो जाएगी, अडोल हो जाएगी, कोई भी बात आएगी तो हिलेगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने की आदत है, निगेटिव को भी हम पॉजिटिव बना सकते, वो ताकत हमारे अंदर आ जाती। तो उसके लिए हरेक को इंडिविजुअल अपने ऊपर मेहनत करनी। भक्ति मार्ग में क्या कहते थे, समझो कोई माताएं बहुत पूजा पाठ करती है, पति को बोलेगी तुम भी भगवान, नहीं नहीं तुम जो करेगी ना, तुम दान पुण्य करो, जो भी करेगी तुम जो करेगी, तुम्हारी पूछड़ी पकड़ के हम आ जाए, यहाँ पूछड़ी पकड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ कोई किसी को है, किसी के पीछे नहीं आ सकता है, हरेक को इंडिविजुअल अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती, खुद के ऊपर खुद ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए स्वचिंतन की आवश्यकता है, स्वदर्शन की आवश्यकता है, तो स्थिति एक रस रहती। स्व का दर्शन करो, स्वदर्शन चक्र क्या है, मैं कौन हूं ये तो सबको समझ में आ गया, मैं आत्मा, पर मैं कौन सी क्वालिटी की आत्मा हूं, कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। मुखड़ा देख ले प्राणी, अपना मुखड़ा रोज ज्ञान के दर्पण में देख, ये आत्मा कि मेरे अंदर अभी कौन कौन से डिफेक्ट है, कौन कौन से दाग है, वो दाग निकालने की मेहनत करो। सहज राजयोग जरूर है, पर मेहनत के बिगर तुम राजा बन जाएगे क्या, बाबा ऐसा छत्र नहीं पहनाता है। उसके लिए हमको स्टडी करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमको स्वचिंतन करने की आवश्यकता है, उसके लिए परमात्म चिंतन करने की आवश्यकता है, सबके लिए शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता। जब ये औरों के लिए शुभ चिंतक बन जाते हैं, कहा जाते है, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। बाबा ने सेवा का जो हमें दिया है सब्जेक्ट, तो किसके लिए दिया? परफेक्ट बनने के लिए सेवा का सब्जेक्ट दिया हुआ। आज अगर हम दूसरों को बैठ के सिखाते हैं बाबा को याद करो, तो बाबा की याद हमें आती। दूसरों को आप बैठ के सिखाएंगे, आप जोश मत करो, तो आपको खुद के जबान के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अरे हम दूसरों को बता रहे हैं, हमारे को अपने ऊपर ध्यान देना। छोटे बच्चे भी गुरु होते हैं, प्रवृत्ति में रहने वालों का ऐसा होता है ना। माताएं अगर समझो बच्चों को गुस्सा करते हुए देखो, हम जाके दीदी को बताएगी तुम बहुत गुस्सा करती है, याद दिला देते हो। बाबा जो बोलता है वो फायदा लेते हैं उसका, परंतु हमारे गुरु हो गए ना। तो बाबा ने ये जो सब्जेक्ट जो हमको दिए है ना, इन सब सब्जेक्ट में हमको पास होना है। एक दो सब्जेक्ट में पास होकर के हमारी स्थिति अचल नहीं बन सकती, अटोल नहीं बन सकती। हमें ज्ञान में भी परफेक्ट बनना है, योग में भी परफेक्ट बनना है, धारणाओं में परफेक्ट बनना है, सेवाओं में भी परफेक्ट। आप ऐसा भी मालूम है, स्कूल में देखो अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएंगे ना, दूसरे सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स ले लिए, एक सब्जेक्ट में लाल रेशा आ गई ना, एकदम नंबर नीचे आ जाता। हमको सब में परफेक्ट बनना है, ये लक्ष्य अगर हम रखते हैं ना, पढ़ाई की तरफ ध्यान, पढ़ाने वाले की याद, पढ़ाई की याद। बाबा कहता है ना, देखो पढ़ाने वाला याद रहता है ना, पढ़ाने वाला याद रहता है, पढ़ाई भी याद रहती है। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, जितना जितना हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, अभी ये जो समय चल रहा है संगम युग, ये कमाई का समय, कमाई के समय बहुत अलर्ट रह जाता है, कमाई हो रही है ना। बाबा अपना मिसाल बताते थे, बाबा कहते थे रात को स्टीमर आते थे वहां कराची में, तो एक भी झुटका नहीं आता था। रात को लोग उतर के आते थे लेने को, ज्वेलरी लेने को आते थे, क्योंकि कमाई होती। तो वैसा ही अभी हम कमाई करते हैं, आधा क्लब नहीं पर हम वास्तव में सारा क्लब बैठ के उसका हमारे को फायदा होता है। सत्युग त्रेता में तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। द्वापर से भी आप देखेंगे तो क्या है, जो सत्युग में इतना माल है तो वो चलता रहता है ना हमारा। विक्रमा जीत राजा ही तो जाके विक्रमादित्य बनता है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसके पास कितना माल था, वो ही फर्स्ट नंबर की आत्मा है ना। तो हम भी तो उसके साथ साथ ही है ना सब। तो इसीलिए पूज्य पुजारीपन का भी सारा इसी समय पाठ हमारा नूंद होता है। तो जब कमाई का समय है तो हमको कितना अलर्ट रहना चाहिए, कितना हमारा खुद के ऊपर ध्यान होना चाहिए, हमारी स्थिति हमेशा उपराम रहे, कहां भी हमारी बुद्धि फंसी हुई नहीं होगी। और बाबा जो बोलता है वो हमको करना ही है। इतना अगर हम अपने साथ प्रण कर लेते हैं कि धरत पड़िए धर्म नहीं छोड़िए, भले मरना भी पड़े तो भी हमको ईश्वरीय नियम जो है वो मनसा से भी हमको कभी उसका उल्लंघन नहीं करना। तो जितना जितना हम बाबा ने जो हमारे को ईश्वरीय नियम बना के दिए, उन ईश्वरीय नियमों पर हम चलते हैं ना, तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होने के कारण बाबा की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती और हमारी स्थिति मजबूत होती जाती है। बाबा की परवरिश मिलती है हमें, उसकी आशीर्वाद मिलती है। लौकिक में भी ऐसा ही होता है ना, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है माता पिता का उसके ऊपर ज्यादा प्यार होता है। तो हम जब उसके आज्ञाकारी बन के चलते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं उसका, वो हमारा ध्यान रखते, हम उसका ध्यान नहीं रखते तो वो हमारा भी ध्यान नहीं रखते। तो हमें बाप के समान बनना है, अचल बनना है, अपनी स्थिति को अडोल बनाना है और एक की याद में रहना। एक की याद में रहने से फायदा है। आप कहेंगे आपके लिए तो सहज, आपका तो कोई है ही नहीं, पर हमारे तो इतने सब रिश्तेदार ये वो, यही तो बड़ी कसौटी है। बाबा ने यही तो सिखाया है प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो। जब तुमने सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया, तन मन धन सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया, फिर तेरे कहां से आए? बाबा के अंदर इतनी धारणाएं कैसे आई? क्योंकि बाबा की डिक्शनरी में मैं और मेरा ये दो शब्द थे ही नहीं। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा ये मेरा है, नहीं, ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये बच्चे बाबा के। इसीलिए देखो इतना बड़ा बाबा के ऊपर परीक्षा आई। 350 बच्चे घर में हैं, खाने के लिए दाना नहीं, परंतु बाबा आनंद में। क्यों? उसको मालूम है उसके बच्चे, उसको फिक्र है, मेरे क्या फिक्र। और उसने बरोबर भूख नहीं मरने दिया किसी को, क्योंकि वो करण करावन है स्वामी, परीक्षाएं तो लेगा ना। आज एक मटका लेते हैं तो 100 बार ही ठोक के लेते हम, और ये आत्मा उसे सौदा करेगा तो ऐसा ही कर देगा, क्या वो भी तो ठोकेगा तो सही ना, हमारे को पक्के है या कच्चे हैं हम। फिर इसमें घबराना क्या, बताओ? तो बाबा जो हम बच्चों को कहता है उसको सदैव ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को उपराम करके बाबा की याद में रह के बाबा का नाम बाला करना हमारा काम। देखो ये एक ही संगम युग ऐसा है जब ये भगवान इस सृष्टि पर आता है और डायरेक्ट हम उसके बच्चे बनते। भक्ति मार्ग में पढ़ते थे, सुनते थे, भगवान मनुष्य को पैदा करता है, मालूम ही नहीं कैसा पैदा, अभी मालूम पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य तो थे नहीं, हैवान बन गए थे, उसने आके हमको मनुष्य बनाया, तो पैदा किया ना उसने, हमारे को नया जन्म दे के पैदा किया और हमारा जीवन सुधारा उसने बैठ करके। तो ये संगम युग ऐसा है जब हम डायरेक्ट, देखो क्या नसीब है हमारा, नशा रखो हमेशा वारे मैं कि वाह मेरा नसीब वाह, बाबा ने हमको कोटों में कोई कोई में कोई चुन करके अपना बनाया हुआ है। तो इसीलिए ये नशा रहेगा, जिसको नशा रहता है उसको निशाना सामने रहता है कि मुझे ये बनने का है, तो खुशी रहती है। तो बाबा ने आके हमें अपना बनाया है और कितना सरल रास्ता बताया, उस रास्ते पर मेरे को चलना है बस, और कुछ नहीं करना, मेरे को मेहनत कोई करने की जरूरत नहीं, जो बाबा ने किया वो मुझे करना। बाबा भी देखो, बाबा ने कोई घर बार छोड़ा क्या? साथ में ही रहे ना सब, परंतु साथ में होते हुए भी कितना अलिप्त रहा, अलौकिक हो गया, लौकिक से अलौकिक हो गया, अलौकिक प्रवृत्ति क्या है बाबा ने प्रैक्टिकल में बताई ना करते। तो इसीलिए बाबा कहता है भले तुम प्रवृत्ति में रहते हो परंतु सदैव ये याद रखो कि हमको, हम बाबा के भंडारे का खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। कभी कभी किसको नशा चढ़ता है, हम खिलाते हैं तुम्हारे को, घर वालों को बोलेंगे हम खिलाते हैं, हम कमाते हैं ना हम खिलाते हैं, अरे कौन खिलाता है? अगर वो नहीं देगा तुम क्या खाएंगे ये तो बताओ, देने वाला कौन है? देने वाला तो दाता है ना। एक बड़ी अच्छी बात है बोला, एक बार क्या हुआ, शिवाजी था ना महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज, तो उसने लंगर चालू किया, सबको रोज खिलाता था, तो उसको नशा चढ़ गया कि मैं देखो सबको खिलाता हूँ सबको खिलाता हूँ। तो अपने गुरु के पास गया, रामदास शायद उसका गुरु था, उसके पास गया, उसको जाके बताया, उसको कहा मैंने अभी लंगर लगाया, रोज मेरे पास आके लोग बहुत खा के जाते हैं, बहुत खुश होके जाते हैं, बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो गुरु को मालूम पड़ा, इसको उसके बोलने पर से समझ में आया इसको अहंकार आ गया। उसने कहा अच्छा अच्छा शिवा तू तो बड़ा अच्छा काम करता है। तो वहां एक टेकड़ी थी ऐसा पत्थर के ऊपर पत्थर, तो उसको बोला वो पत्थर तो निकाल के ले आ। वो पत्थर उसने निकाला लेके आया, तो बोला इसको तोड़ जरा। उसने उसको अलग किया दोनों पत्थरों, तो उसके बीच में एक छोटा सा कीड़ा था। कीड़ा था, उसके पास में चावल के एक दो दाने रखे हुए थे और पानी था, पानी भी रखा हुआ था वहां, पानी पत्थर के ऊपर पानी पड़ा हुआ था। तो बोले शिवा ये बता, ये तुमने कभी इसको पहुंचाया सारा सामान, हाँ पानी और खाना इसको तुमने कीड़े को कभी पहुंचाया? बोला ये तो बताओ। तो उसको अक्कल आ गई कि मेरे को देखो कैसा अहंकार आ गया। बोला मैं कैसा पहुंचाऊंगा? बोले तुम नहीं पहुंचा सकता है ना, तो ये कौन करता है सब कुछ? तो वैसा दाता देता है, बाकी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। अभी किसी मनुष्य की ताकत है किसी पत्थर में जाके पानी डाल देवे या कोई चावल डाल देवे? तो उसी प्रकार अगर कोई दूसरे को देता भी है तो किसका देता है वो? अरे कोई अपना 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 नसीब लेके आता है, और देने वाला दाता ही देता है अगर ये ध्यान में रखते हैं। और हम बाबा का खा रहे हैं, बाबा हमको खिला रहा है, ये अगर बुद्धि में रहता है तो जैसा अन्न वैसा मन क्या होता है, शुद्ध होता जाता है। तो जितना जितना इन बातों से उपराम होते जाते हैं ना, उतना उतना स्थिति जो है वो हमारी सदा के लिए अचल और अडल हो जाती है। ओम शांति भाई।